और उसके बाद आप देखिए कि यहां ये जो बात आ गई है ना कि जाम अल्लज़ीना कफरू, यहां से अब दूसरा इशू शुरू होता है। अभी सारा इकट्ठा हो गया ना तो मैं इसको रिकैप करा दूंगी। अभी तक जितनी बातें आपने तीन सुनी है ना, ये नबी की जात के मुतल्लिक थी कि नबी के आने पर एतराज किया, इनकार किया, मुंह फेर के नबी से। इमेजिनेशन में ले आइए कोई भी पिक्चर, अगली आयत में देखिएगा आपको इनका अब दूसरा रवैया दिखलेगा। जाम अल्लज़ीना कफरू, ज़ोम किया, गुमान किया, दावा किया काफिरों ने, क्या अल्लयो बासू, वो नहीं हरगिज उठाए जाएंगे। ये दूसरा नुकसान था। वो क्या कहते हैं, बाबर बैशकोश के जहां दोबारा नीस्त। ये दूसरा बड़ा जुर्म होता है कौमों का कि इस दुनिया से जाकर एक अगली दुनिया में मकाफाते अमल के लिए पेश किए जाएंगे, इस अकीदे से इनकार कर देते हैं। अल्लई, और आप शिद्दत देखिए, लन कब आता है याद है, फाइल लम तफलु वलन तफलु, पहले पारे से चल रहा है। मुस्तकबिल में किसी चीज का हरगिज ना होना, नेवर के मानों में हरगिज नहीं वो उठाए जाएंगे। अच्छा, कुल आप इनको कहिए, बला क्यों नहीं, वह रब्बी कसम है तेरे रब की, लतुब असुन्ना अलबत्ता जरूर तुम उठाए जाओगे। वही ताकीद है ना जो उनके इनकार में थी, वही अल्लाह ताला की तरफ से शिद्दत है इधर कि नहीं तुम जरूर श्योरली श्योर शॉर्ट तुम उठाए जाओगे। फिर क्या होगा, उन्होंने तो बस इतना ही कहा था ना लाई युबासु, लेकिन अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, नहीं लतुबा सुनना, पहली बात है तुम जरूर उठाए जाओगे, तो क्या उठा के तुम्हारी शक्ल देखी जाएगी, नहीं सुम्मा लतुनब्बउन्ना, सुम्मा फिर लतुनब्बउन्ना, फिर अलबत्ता जरूर तुमसे खबरें ली जाएंगी, तुम्हें जरूर बताया जाएगा। क्या यानी तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा, लिख लीजिए लतुनब्बउन्ना का मानी इन्फॉर्म किया जाएगा, क्या बीमा अमिल तुम, उसके बारे में जो तो अमल करके आए हो, तुम्हें क्यामत के दिन के स्कैनर्स के सामने खड़ा कर कर तुम्हारी पिछली पूरी जिंदगी की तस्वीरें दिखाई जाएगी। एकदम बंदा पूछता है ये कैसे होगा, मुझे तो 10 साल पुरानी बात भी नहीं याद, मुझे तो आज से 20 साल पुराना गुनाह क्या नेकी भी नहीं याद। तो अल्लाह कहते हैं ज़ालिका अल्लाह यसीर, ये बात अल्लाह पर बहुत आसान है। यहाँ देखिए ये जो लफ्ज है ना ई बला व रब्बी, ये अछूता अंदाज है। आपको याद आई होगी पिछली सूरह यूनस की आयत, आयत नंबर 53 में हम पढ़ चुके, वयस्तंबियूनक अहक्कुन हुआ कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक्कुन। वहां क्यामत के लिए ये अंदाज था, कसम का अंदाज है, यानी अल्लाह ताला अपने नबी से अपने रब की कसम खा कर ये बात कहलवाता है कि ये होगा, ये होता है। फिर इसी तरह सूरत सबा में भी यही अंदाज था, वकाल अल्लज़ीना कफरू ला तातीन अस्सातु कुल बला व रब्बी लतातीयन्नकुम, काफिरों ने कहा हरगिज क़यामत नहीं आएगी, कहा तुम्हारे रब की कसम वो आएगी। ये आयत नंबर 3 है सूरत सबा की। अच्छा जी, अब सवाल एक पैदा होता है कि जो आखिरत को मानता ही नहीं है, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप उसको आखिरत के आने की खबर कसम खा कर दें या कसम खाए बगैर दें। जिसको नहीं मानना वो अपने गुमान पर उसको नहीं मानेगा। सवाल समझे, कि जिन्होंने मानना ही नहीं है तो अल्लाह कसम खा खा के क्यों उनको यकीन दिला रहा है। तो इसका जवाब नोट कीजिएगा कि पहली बात यह है कि जिन लोगों के सामने नबी सल्लम ये आयतें पेश कर रहे थे वो अपने इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर जानते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। और इतना सच्चा शख्स जब कसम खाकर कोई बात कहता है तो वो बात झूठ कैसे हो सकती है। फिर दूसरी बात एक और भी इसमें समझ में आती है, पीछे आपको खुलासे में बताई थी कि फिलॉसफी और नबी का फर्क किस चीज का होता है, कोई बताएगा एक लफ्ज में, सूरत के इंट्रो में बात हुई थी जी, आप पीछे से। जी वही तो है, देखिए फिलॉसफर कभी 100% कन्विक्शन से बात नहीं करता। यहां नबी और फिलासफर का फर्क बताया कि नबी 110% यकीन से बात करता है कि मुझे यकीन है जो बात कह रहा हूं ये होगी और ये होकर रहेगी। लिहाजा अल्लाह ताला की इस बात को समझो, कल जब तुम उसके सामने पेश किए जाओगे उस दिन क्या होगा, वज़ालिका अल्लाह यसीर, ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। देखिए सर, आप इमेजिन करिए कि हम क्यामत के दिन खड़े हैं अल्लाह के सामने और हमारी अगली पिछली सारी बातें क्यामत के दिन खड़ी की जा रही हैं। देखो तूम क्या करके आए हो, क्या करतूत थे, कैसे थे। हमने जसमल हुस्ना की एग्जीबिशन देखी तो उसमें बाकी सारे नाम भी थे, लेकिन इस दफा जिस चीज ने मुझे हिलाया, जिसमें मैंने खुद भी कभी इतनी गौर नहीं किया था पहले, और वो है अल्लाह ताला का नाम अस्तीर, सतर से छुपाने वाला, अलगफूर अलगफार, बख्शने वाला, माफ करने वाला और छुपाने वाला। तो मैंने देखा कि अल्लाह की जात कितनी प्यारी है, लोगों के ऐब छुपा लेती है। हम सब यहाँ कितने अच्छे काम के लिए बैठे हैं माशाल्लाह, हम कितनी अच्छी जगह पे आके बैठ गए। हम सुबह क्या करके आए, हमने रात के अंधेरे में क्या देखा, कल शाम को हम किस जगह पे थे। कभी अल्लाह ने हमारे आते ही पोल खोला, पीछे एक फरिश्ता खड़ा और कहा ना इसको ना देखना, ये बहुत पैन ओढ़ के आके बैठ के, ये देख लो जरा ये किस करतूत में है, क्या करके आई है। हम तो हाल और हुलिये बदलते देख लेते हैं ना लोगों के। लोग मुल्क बदलते हैं तो हाल बदल जाता है, हुलिया बदल जाता है। जिस चीज़ ने मुझे बहुत दुखी किया, ज़ाहिर उम्रे की फ्लाइट थी और भी लोग कहीं से भी होंगे, जहां तक कनेक्शन था वहां तक मैं सबको पहचान रही थी, जो भी हमारे साथ इर्द गिर्द के लोग थे। उस कनेक्शन के बाद जब हम अगली फ्लाइट के लिए बैठे तो वल्लाह यादों को तो मैं पहचान ही नहीं सकी। बाद में किसी के दुपट्टे के रंग से किसी चीज से पहचाना कि अच्छा ये वही है जो पहले किसी और रूप में थी, क्योंकि पता ये था कि हमने एक वेस्टर्न कंट्री में उतरना है। वल्लाह दिल करे कि बस यहीं तबाह हो जाए। देखिए अल्लाह की जात मैं कहती हूं कितनी वसतों वाली है, उसको सब पता है लेकिन बताता कोई नहीं है, वरना तो हम किसी को शक्ल ना दिखा सकें। उसके लिए आसान है लेकिन वो नहीं करता, वो किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालता। करो क्या, अब आप देखिए कि ये आयतें हैं ना दिल को पकड़ने वाली, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ज्यादा पकड़ेगा, मेरा दिल पकड़ा जा रहा है, आपको शायद ना पकड़ा जाए, क्योंकि मैं मक्का से होके आई हूं और आप सोच रहे होंगे कि हम कुरान के आगे बैठे हैं, कोई फर्क है कैफियत में। मैं सोचती हूँ कि हम वहां जाके और यहाँ आके बदल क्यों जाते हैं, नो रीजन टू चेंज। लोग रोते हैं हाय काबा गया, मक्का नहीं है, ये नहीं, वो तो क्या हुआ, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह ताला का इल्म आपके साथ है। तो जब अल्लाह की सारी वसत आ गई है ना दिमाग में, आ गई है ना, तो बस अब तुम एक काम करो, फामिनो बिल्लाही, तुम उस पर ईमान ले। पूरे कुरान का निचोड़ है ये, देखिए सूरत तगाबुन ईमान की हकीकतें खोलती है। मेरे और आपके अमल में जो कमी है ना, वो ईमान की कमी का पोल खोलती है। जिसने अपने रब को पा लिया, उसकी मार्फत आ गई, फिर उसके बाद तो दिल झुकेगा, आमीनु बिल्ला, बस ईमान ले आओ, दैट्स इट। क्या सिर्फ अल्लाह पर नहीं, व रसूल ही, ये कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह ही के भेजे हुए रसूल का इनकार कर दो। तो लिख लीजिए अल्लाह रसूल ही के नीचे क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस दो चीजें नहीं, वन नूर इल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर भी ईमान ले आओ, उस रोशनी को भी मान लो जो हमने नाजिल की, ये क्या होगा, कुरान और हदीस। ये है अल्लाह, उसका रसूल और उसका कुरान, और कुरान के साथ ला मुहला हदीस और नबी की बात आती है। जिसने कुरान को हदीस से फर्क करना चाहा वो फट गया, सूरत मायदा में भी पढ़ चुके हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करे उसको खूब देख रहा है, उसको तो आज भी पता है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। क्या यौम यजमाउकुम लियौमिल जम, उसका पता तुम्हें उस रोज चल जाएगा जब जमा करने के दिन वो तुम सबको इकट्ठा करेगा। और ये दिन कौन सा है, ज़ालिक यौमुत तगाबुन, ये तो एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का दिन होगा। ये है यौमुत तगाबुन, आखरत के मैदान में खड़ा किया जा रहा है मुझे और आपको, कि जिस रब ने पैदा किया वो तुम्हें लेकर आएगा। और ये सब कुछ है, तीन चीजों पर ईमान की बात कर दी, अल्लाह को मान जाओ, नबी को मान जाओ और कुरान की रोशनी को ले लो, कुरान के नूर के साथ चल पड़ो। जिंदगी के अंधेरे चलते छटते जाएंगे और कुरान एक ऐसा चिराग बनकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि तुम्हें रास्ते दिखाएगा। इसकी रोशनी में तुम हर मसले को समझोगे, अपनी अक्ल पे मत डालना मसाइल को, फिक्र पे ना डालना। और जिसके पास ये चिराग हो वो कभी भटक सकता है? आप मुझे बताइए कि जिस घर के रास्ते में चार चार फुट पर एक एक बल्ब लगाओ, क्या वो उस रास्ते पे चलने वाला भटक सकता है? कोई साइन पढ़ने से महरूम रह सकता है? राइट लेफ्ट का फर्क उसको ना पता चले, सड़क चौड़ी है मोटी है, किधर जा रही है किधर नहीं, वो तो दिन की रोशनी की तरह उसको देखेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ कुरान को नूर कहकर बता दिया गया कि जिंदगी में फिक्र और अमल की राहों में ये कुरान एक चिराग है, इसके बीच में चलोगे ना तो रास्ता सीधा दिखेगा। फिर उम्र भर सिराते मुस्तकीम पर ऐसे चलोगे کہ ہر قدم پر تمہیں خود پتہ چلے گا کہ گمراہیوں کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت کے گھڑے میں کہاں گرنے والا ہوں اور سلامتی کا راستہ کون سا ہے. اب اس دنیا کی دلدل سے پھنس کے پہنچ گئے یوم الجم. کیا مراد ہے یوم الجم سے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. یہ دو نام ایک ہی آیت میں آ رہے ہیں. یوم الجم, اجتماع کا دن. کون کس سے جمع کرے گا؟ سب جمع ہو جائیں گے, اگلے پچھلے. قیامت کے دن آدم سے لے کر قیامت سے پہلے تک پیدا ہونے والے سب لوگ جمع ہو جائیں گے. اور یہی چیز سورت ہود میں ہم پڑھ چکے, ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع ہوں گے اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. سورت ہود کی آیت نمبر 103 ہے. پھر یہی بات سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے, قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ان سے کہو کہ تم پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ یقیناً ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جائیں گے. آیت 50 ہے سورت واقعہ کی. تو کیا پتا چلا؟ قیامت کے دن سب جمع ہوں گے. پہلے آپ اس دن کو تھوڑا سا محسوس کریں. کون کون جمع ہوگا؟ سب. انبیاء کرام کو سوچئے. برے لوگوں کا تو سوچنے کو دل بھی نہیں کرتا نا, لیکن یاد رکھیے کہ میدان محشر میں فرعون بھی ہوگا, شداد بھی ہوگا, نمرود بھی ہوگا, ہر دور کا طاغوت بھی ہوگا اور وہاں ہم کھڑے ہوں گے. اور یوم التغابن, اس کو بھی دیکھ لیجئے. اتنا وسیع المعنی لفظ ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی دوسری زبان میں ایک لفظ کیا ایک فکرے میں بھی اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں قیامت کے جتنے بھی نام آئے ہیں نا, آپ کہہ لیجئے یہ نام سب سے زیادہ پرمانی ہے. آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تغابن غبن سے ہے. اس کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں, غبن اور غبنا, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یعنی با پہ جزم بھی لگا سکتے ہیں اور با پہ زبر بھی. جب با پہ پیش آتی ہے نا غبن, تو زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں پایا جاتا ہے, یعنی فزیکلی دھوکا دینا جیسے. اور جب با کی زبر ہوتی ہے نا غبن, ہاں, تو رائے کے معاملے میں غبن, باتوں میں کسی کو ٹوسٹ کر دینا, یہ معنی ہوتا ہے. کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں غبن خبرن ناقا, ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں چلی گئی. اسی طرح کہتے ہیں غبن فلانن فل بئی, اس نے فلان شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیا. اسی طرح غبن فلانن, اس نے فلان شخص کو گھاٹا دیا, نقصان دیا, لاس کر دیا اس کا. اور اسی طرح کہتے ہیں غبن تو من خفیشی ان دا فلان, فلان شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی. چلیے اردو میں آپ نے ایک لفظ پڑھا غبی, وہ بھی اسی سے, غبی اور غبین. وہ شخص جس میں ذہانت کی کمی ہو, ڈف جس طرح کہتے ہیں ڈل, جس کی رائے کمزور ہو. مغبون کہتے ہیں, مفعول کا وزن ہے, کون سا ہوگا مغبون؟ وہ شخص جو دھوکا کھا جائے, جس کو کسی نے دھوکا دے دیا. پھر اسی طرح سے الغبن غفلت, ایک لفظ ہے اس میں غفلت, انسیان, یعنی اس کے آپ جو پاسبل میننگز ہیں نا ڈکشنری میں وہ لکھ لیجئے, تو پھر انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن کی تصویریں آنکھوں کے سامنے دکھیں گی کہ اس دن جا کے ہونے کیا والا ہے ہمارے ساتھ. غفلہ نمبر ایک, غفلت, انسیان, بھول, فوت الخزی, اپنے حصے سے محروم رہ جانا, یبخس صاحبک فی معاملتی بینک و بین لدرب من الاخفائی, ایک شخص کا کسی غیر مخصوص طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا. امام حسن بصری نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے تجارت میں, تو کہنے لگے ہاذا یغبن عقلک, یہ شخص تجھے بے وقوف بنا رہا ہے. اچھا, اب یہ تو لفظ بات تھی نا غبن کی, لیکن یہاں لفظ یوم الغبن نہیں ہے, تغابن ہے. اور تغابن تفاعل کا وزن ہوتا ہے, معاشرہ, معاملہ, مقابلہ, مناظرہ, ڈیول مانی آتے ہیں. تو جب لفظ تغابن بنتا ہے نا, تو دو یا دو سے زائد کے بیچ ایک دوسرے کو غبن کرنا, دھوکہ دینا, بات سمجھے؟ میوچولیٹی کا مانی آتا ہے, باہم کا مانی آتا ہے, اشتراک. تغابن القوم, بعض لوگوں کے ساتھ غبن کا معاملہ کرنا، یا ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا. اسی طرح تغابن کہتے ہیں ایک کا حصہ دوسرے کو مل جائے اور اس کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا. تیسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے کا نفع لے جانا، یعنی دوسرے کا حصہ لے جانا. اور پھر آخری معنی بتا کہ اب ہم قیامت کے اوپر چلتے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں غافل اور ضعیف الرائے ثابت ہونا. چلیے، اتنی لمبی بات کی ہے تو ذرا اس کو دیکھیے کہ اب اس لفظ کو یوم التغابن کی صورت میں کیسے دیکھیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے، ذالک یوم التغابن قیامت کے لیے آیا ہے. وہ دن ہوگا تغابن کا. کیا پتا چلا؟ اس دنیا میں تو روز و شب دھوکے تغابن ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بھی وقتی ہیں کیونکہ دنیا ٹیمپریری ہے. اصل اور حقیقی غبن جو ہونے والا ہے نا لوگوں کے ساتھ، وہ قیامت کے دن ہوگا. وہاں جا کر پتا چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع لے گیا. وہ سارے معنی جو بھی بولے نا، اس کے ساتھ بس قیامت کے دن کا لفظ لگا کے جملے بنا لیں. اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا، کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا، اصل میں دھوکا کس نے کھایا، کون ہوشیار نکلا، اصل میں کس نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ غلط کاموں میں لگا کر کھپا دیا، کون دیوالیہ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، کس نے اپنی قوتوں اور قابلیتوں اور صلاحیتوں اور اپنے مال اور اپنے وقت کے نفع کے سودے کو نقصان میں پیش کیا، اور کس نے ان کو لگا کر فائدے لوٹ لیے. کون ہے جس نے دنیا کی حقیقت سمجھی اور فائدہ پا گیا، اور کون ہے جو نہ پا سکا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کو پریکٹیکلی پیش کریں اگر تو یوم التغابن کیسے ہے. تو نمبر ایک، اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ لے جائیں گے جن کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے کام کرتے. حدیث آپ نے سنی بھی ہے نا کہ ہر شخص کا ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں. جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا، تو ان کے جنت کے گھر دوسرے جنتیوں میں بانٹ دیے جائیں گے. اسی طرح ہر شخص کا ایک گھر جو دوزخ میں ہے، تو جب وہ انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائے گا نا، تو اس کا جہنم کا جو حصہ ہے نا، وہ دوسرے جہنمیوں کو کہا جائے گا یہ بھی تو لے لے. ایک معنی یہ ہے، بات سمجھے؟ یعنی جنتیوں کو جہنمیوں کے حصوں کا غبن مل جائے گا، اور جہنمیوں کو اپنے ساتھ دوسروں کا بھی جہنم کا حصہ مل جائے گا. اور یہ روایت بخاری کی ابو ہریرہ سے کتاب الرقاق میں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا، اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو. کیا کیفیت ہوگی انسان کی. اور جو شخص دوزخ میں جائے گا، اس کو وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو اگر جنت میں جاتا تو ملتا، تاکہ اسے اور حسرت ہو. تو پہلا مفہوم یوم التغابن کا قیامت کے تناظر میں یہ ہوا کہ انسان اپنے ساتھ دوسروں کی بھی نیکی یا بدی لے لے گا. دوسرا اس کا معنی مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ کر لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکی، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں. یعنی جن لوگوں پہ ہم نے زیادتی کی ہوگی نا قیامت کے دن، پہلے شروع میں ان کو ہماری نیکیاں دی جائیں گی، اور ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں اور ہماری زیادتیاں باقی ہوئیں، تو اس شخص کی جو گناہ تھے وہ ہم پر ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے یوم التغابن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی معروف ہے، کہ مفلس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے درہم اور دینار نہ ہو. کہا ان مفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کے آ رہا ہوگا، لیکن لوگ آئیں گے جن کے اس نے حق مارے، کسی کو گالی دی، کسی کو ناراض کیا، کچھ کیا، تو آخر میں ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو بانٹ دی جائیں گی. یہ ہے مفلس، ہینڈ ٹو ماؤتھ. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے جو یوم التغابن کو سمجھاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، وہ مظلوم کا حق اسی طرح ادا کر سکے گا کہ اپنے پلے میں کچھ بھی نیکیاں رکھتا ہو، ان میں سے اس کا تاوان دے گا. تو اردو میں کہتے ہیں نا تاوان بھرنا. قیامت کے دن انسان تاوان بھرے گا اور مظلوم کے گناہوں کو اپنے اوپر لے گا. حدیث سناتی ہوں، بات واضح ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بوجھ ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اس سے معاملہ صاف کر لے. क्योंकि आखरत में दीनार और दिरहम तो होंगे ही नहीं, वहां उसकी नेकियों में से कुछ लेकर मजलूम को दिलाई जाएंगी, और अगर इसके पास नेकियां काफी ना हो तो मजलूम के कुछ गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे। सोचिए, आपको कुछ ना मिले ना तो आप परेशान ही इतना होते हैं, लेकिन आपके पास कोई चीज हो, गोल्ड की रिंग, कोई जो आपको चीज पसंद है, और वो आपसे छीन कर किसी ऐसे को दे दी जाए जो आपको पसंद ही नहीं है, ये आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। क़यामत के दिन हमारे नापसंदीदा लोग, जिनको हम दुनिया में पसंद नहीं करते थे, जिन पे जुल्म करते थे, जिनकी गिबतें करते थे, उनके हाथों में अपनी नेकियां देखकर क्या हाल होगा। मुसनद अहमद की रिवायत है जाबिर बिन अब्दुल्ला से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई जन्नती जन्नत में और कोई दोजखी दोजख में उस वक्त तक ना जा सकेगा जब तक कि उस जुल्म का बदला ना चुका दिया जाए जो इसने किसी पर किया हो, हत्ता के, इसको गौर से सुनिएगा, हत्ता के एक थप्पड़ का भी बदला दिया जाएगा। बच्चों को भी मारें तो सोच के मारें। साहबा कहते हैं कि हमने ये अर्ज किया, ये बदला कैसे दिया जाएगा जबकि क्यामत में हम तो नंगे बुच्चे होंगे, यानी कपड़े भी नहीं है जिस्म पे, तो देंगे क्या, खाली हाथ है। फरमाया, अपने आमाल की नेकियों और बदियों से बदला चुकाना होगा। सोचिए, कहीं गए हो ना तो हम फौरन सोचते हैं परस पास है, साथ रख के निकलते हैं ना, कोई पैसे फोन, और अब बिल्कुल खाली हाथ हो तो आप कहते हाय कुछ लेना पड़ गया, देना पड़ गया, तो क्या करेंगे, तो कहाँ फिर नेकियां देंगे। ये तो ऐसे ही जैसे मैं खाली हाथ बाहर जाऊं और किसी के ऊपर ज्यादती की हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उंगलियां काट के उसको दे दी जाए, मेरे हाथ काटे जाए, मेरे सल के बाल, यानी फिर अपनी जान से बदला देना है ना। इस तरह क़यामत के दिन इंसान अपने बदले दिलाएगा। और जो मुफलिस वाली हदीस आपको सुनाई है, मुस्लिम और मुस्तद अहमद में अबू हुरैरा से, वही हदीस है जो मैंने आपको अपने लफ्जों में सुना दी। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है, खूबसूरत इस नाते से है कि अच्छे काम के अंदर भी बुराई के अहतमाल कितने होते हैं। और हदीस मुस्लिम अबू दाऊद में हजरत बुरैदा से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी मुजाहिद के पीछे अगर किसी शख्स ने इसकी बीवी और इसके घर वालों के मामले में खयानत की तो क़यामत के रोज वो इस मुजाहिद के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और इससे कहा जाएगा कि इसकी नेकियों में जो कुछ तू चाहे ले ले। फिर अल्लाह के नबी ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी क्या तुम अंदाजा कर सकते हो कि वो इसके पास कुछ छोड़ेगा। अच्छा, इस हदीस को पढ़ के खौफ कितना आता है। मुजाहिद कौन होता है? जो अल्लाह के रास्ते में लगा। एक शख्स अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और आप पीछे से उसकी खयानतें कर रहे हैं, उसकी गिबतें कर रहे हैं, आप उसके बीवी बच्चों को सता रहे हैं, ये भी मुमकिन है ना। जब दिल सख्त हो जाता है ना तो इंसान किसी की अच्छी कॉज को भी अच्छा नहीं रहने देता। मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकई बाल से बारीक है पुलसरात, और ये जो मामलात की पुलसरात है ना, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, कितने केयरलेस है। अभी भी अगर हमारी जुबान केयरलेसली बोलती है ना तो दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह इसको सीधा कर दे। तकवा आएगा तो जुबान बंद होगी। जुबान तो दूसरे सुनते हैं ना बोलते हुए, वल्लाह ही इंसान अपने दिमाग की जुबान बंद करता है। खबरदार बुरा ख्याल ना लाना, अंदर पकड़ हो जाएगी, क्योंकि वलीमों बिजाते सुदूर है। ये एहसास पैदा हो जाए तो फिर तो मौजे ही मौजे हैं। फिर असल में कदफ लहा मन जक्का व कद ख्वाब मन दसा। मैं सोचती हूँ जिस बंदे ने इतने बड़े बड़े स्कैनर्स में से गुजरना हो, क्या वो दुनिया में केयरलेसली गुजार सकते जिंदगी? आप तो गाड़ी नहीं खड़ी करते जहां खड़ी ना करने का साइन हो, आप तो स्पीड नहीं तेज करते, आप तो क्या नहीं करते, क्योंकि आपको फिक्र है कि टिकट आएगा, 60-70-80-100 पाउंड लगेगा। तो अल्लाह के जो स्कैनर्स हैं उसकी हमें कितनी कम फिक्र, हम शुतर बे मुहार बोलते हैं। वाकई जिस वक्त फील हो रहा है कि बस जिप द माउथ। और आप नोट करके देख लें, हमारी दूसरों के साथ जितनी बातें हदीसों में भी आ रही हैं या जहां भी हैं, उसमें अक्सर का ताल्लुक इस छोटे से गोश्त के लोथड़े से। दिमाग में आती है, आने दें, फौरन खत्म कर दें, औज़ुबिल्लाह पढ़ दें, कभी उसको जुबान पे लाकर अपनी नेकी ना उसको दे दें। तो लिहाजा जो लोग मुजाहिदीन के बच्चों, क्योंकि उनकी टेक केयर करते तो सवाब भी ज्यादा था, वो अल्लाह के रास्ते में गया था, और आप जाके उसके घर से ही चोरी करके आ जाएं या उसके बीवी बच्चों को दुख दे दें, तो ये कितनी बड़ी बात है। चलिए इसको देख लें, और आखिरी मानी इसका देख लेते हैं, यौम तगाबन का, कि लफ्ज गबन के साथ तिजारत जरूर आता है जहन में, राइट, बैंकरप्सी। तो इस नाते से भी देखिए, तो काफिर और मोमिन की जिंदगी इस दुनिया में जो वो गुजारता है ना, आप सोचिए कि एक तिजारत है। मोमिन अगर नाफरमानी का रास्ता छोड़कर इताअत इख्तियार करता है, अपनी जान माल और मेहनत अल्लाह के रास्ते में खपाता है, तो गोया के वो घाटे का सौदा छोड़कर एक ऐसी तिजारत में अपना सरमाया लगाता है जो आखिरकार नफा देगी। लोगों को समझ ही नहीं आता क्या मिलता है इस रास्ते में, क्या मिलेगा आपको यहां से। क्या इसका नतीजा? तो वही बात है कि इस 4 दिन की दुनिया के फायदों को छोड़कर अबदी नफे का सौदा करना, अल्लाह कहते यही तो अकलमंद है, तुम बेवकूफों को अकलमंद है। इसके बरक्स आप देखिए कि काफिर अल्लाह की इताअत छोड़कर नाफरमानी और बगावत में अपना सब कुछ लगाता है, तो गोया कि वो एक ऐसा ताजिर है जिसने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। उलाइक अल्लज़ी नश्तरव अद्दलालत बिल खुदा फमा रबिहत तिजारतहुम फहुम ला मुहतदून। हिदायत नहीं मिलती, यानी आप नोट कर लें कि इस दुनिया के सौदे में से जो हिदायत को छोड़ देता है वो सबसे बड़े घाटे का सामने वाला। लेकिन दुनिया में कोई जरूरी नहीं कि ऐसा लूजर हमें दुखी दिखे, असल पता चलेगा क्यामत के दिन कौन काफिर है और कौन मोमिन है। अल्लाह अकबर। एक और मानी सामने आ गया, वो भी लिख लें। एक और सूरत तगाबुन की। दुनिया में लोग कुफर फिस्क जुल्म ज्यादती पर एक दूसरे की बड़े इत्मीनान से मदद करते हैं, गुना पे भी मदद करते हैं ना, कभी दोस्ती के नाम पे, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, राइट? गलत कामों में साथ देते हैं। किसी बहन की बात याद आ गई, एयरपोर्ट पे थी, कहती देखें किसी का फोन आ गया, मेरी दोस्त फुलां भी जो हैं तो पता है उनको कि मैं आ रही हूँ, तो कहती है मेरे मियाँ सिगरेट पीते हैं तो आप उनके लिए वहां से सिगरेट लेके आए ड्यूटी फ्री से। अल्लाह की बंदी, आपको आपकी दोस्त कह रही है कि मेरे मियाँ के लिए सिगरेट लेके आए, आप उम्रे से आ रही हैं। मैंने कहा आपकी दोस्त आपको सही बात कह रही है? कहती बस लोग ऐसे ही कहते हैं। लाताओं नललिस्मी वाला दुआ, आपको क्या मुसीबत पड़ी है? जिसको पीने वो महंगे पिए, फिर सस्ते क्यों पिए? और आप अपनी दोस्त के मियाँ के लिए लेके जाए सिर्फ इसलिए कि वो खुश हो जाए। ये बात है कि दुनिया में गुना पे गलत पे दोस्ती और मोहब्बत और खानदानों के नाम पर हम तावुन कर देते हैं, क्यामत के दिन वहां जाकर एक दूसरे पे लान तान कर रहे होंगे, वहां पता चलेगा कि हमने बड़े धोखे खाए। हर एक ये महसूस करेगा कि जिससे मैं अपना बेहतरीन बाप भाई बीवी शौहर दामाद औलाद दोस्त लीडर पीर मुरीद हामी मददगार समझ रहा था, वो दरअसल मेरा बदतरीन दुश्मन था। और ये वो दिन होगा जिस दिन हर रिश्तेदारी और दोस्ती, अल्लाह अकबर, अकीदत और मोहब्बत बुग़्ज़ और अदावत में बदल जाएगी। आज दुनिया में अगर हमें कुरान समझ आता है ना, तो ये फीलिंग दुनिया में शुरू हो जाती है। फिर वहां पता चलेगा कि दूसरों के जुर्म को अपने कंधों पर लेकर मुझे कितने नफलों का सवाब हुआ। और मैं देखती हूँ कि लोग इतना इबादत में थकते हैं, थकते हैं, तहज्जुदों में नमाजों में तवाफों में इतनी सख्त नेकियां करते हैं, लेकिन जहां अमली जिंदगी आती है तो वहां लोगों से डरने लग जाते हैं। आपको पता है कि रियाजुल जन्ना के बारे में हदीस है कि ये जन्नत का टुकड़ा है। जिंदगी में एक दफा मौका मिल जाए आप नफिल पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं, कोई उसके सवाब की और उसकी जजा की बात नहीं। और अल्लाह आप सबको लेकर जाए, मैंने आपके लिए बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह लगा दे आपके हक में। आप देखिएगा रात 12 बजे भी आप ऐसे लगता है कि वो खबे से खबा जुड़ रहा है। वो औरतें जो वहां जाती वो रोज वहां जाके बैठ जाएंगी, और 2 नफिलें पढ़ के उठ के चले जाओ, चलो सबको मौका मिले, वो वहां बैठ के पता नहीं सलात व तस्बीह शुरू कर ले, लेकिन जो ही बाहर निकलेंगे ना तो हरम के सेन में बैठ के गिफ्तें कर रहे होते हैं। मस्जिद नबवी में मैंने अपने पास बैठी सिस्टर्स को कहा, अल्लाह की बंदियों ये क्या कर रही हो? बोली वाली होती हैं, हमारे मुल्क के गांव से आई हुई हैं, बड़ी अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह उनको इंशाल्लाह उनके भोलपन में भी माफ कर देगा। हर मस्जिद में बैठी गिफ्तें कर रही हैं, बाहर बैठी सेन में ऐसे लग रहा है अपने घर के बेडरूम में बैठी हैं, दुपट्टे और आधी आधी शलवार ऊपर हुई भाई, अल्लाह की बंदी इसको तो नीचे नहीं, दम करो, फूक मारो मुझे। मैंने कहा फूक शलवार के ऊपर से भी मच जाएगी, इसको तो नीचे करो, मेरे गोडों में दर्द है बहन। और मुझे क्या समझ, मैंने उसको जानती हूँ, वो सिर्फ कपड़े निकाब हिजाब से समझती है बड़ी नेक होगी, आउज़ुबिल्ला। मैं कहती हूँ अल्लाह तू ही जाने, तेरे बंदे तू खुद सबको जन्नत दे दे, बस हम नहीं ये नतारे कर सकते। तो वहां जाके असल पता चलेगा कि असल नेकी जो है ना वो अल्लाह को नहीं अल्लाह के हुक्म को मानना है। मैं सोचती हूँ कि इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं क़यामत के दिन, कि क्या कभी आपके मैट्रिक के रिजल्ट में हुआ होगा? याद है आपको जब फर्स्ट टाइम मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो वो बोर्ड के थ्रू आता है ना पाकिस्तान में। अब 10th क्लास तक आप चूंकि अपनी क्लास में होते हैं, आप मॉनिटर हैं, आप फर्स्ट आ रहे हैं, सारी क्लास पहले से एक्सपेक्ट करती है कि आप फर्स्ट आएंगे, और जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं हो सकता है आप थर्ड भी ना आए। यौमत तगाबुन, यहाँ टीचर को भी पता होता है कि ये स्टूडेंट है, ये ब्रिलियंट है, ये अच्छा है, वो उनका पेपर चाहे पढ़े बगैर ही टिक टिक कर देते होंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट कि ठीक ही होगा। लेकिन जब आप बाहर के टीचर के हाथों से चेक होते हैं लग पता जाता है, और असल इम्तिहान तो वही होता है। क्यामत के दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। हम जिनको बहुत नेक समझ रहे हैं ना, अल्लाह करे वो उससे भी अच्छे रिजल्ट लेके आए, लेकिन क्यामत के दिन बहुत बड़े बड़े गलत नतायज लेके जाएंगे। और वो जिनको हम पता नहीं क्या कुछ समझते नहीं, वो कहाँ भाग के 500 साल पहले जन्नतों में चले जाएंगे। تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہی ہے، اس کی فکر کرو. کون سی؟ ابھی سے پیچھے والی آیت تھی، اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے قیامت کا دن انسان کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں پتھر کے نیچے بھی چھپی ہوئی اگر کوئی نیکی یا بدی تھی نا، تو وہ بھی کھول کے پیش کر دی جائے گی کہ ذالک یوم التغابن، یہ ہے غبن کا دن. سیکھنے کی یہی بات ہے، کسی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. میں کیوں پکڑی جاؤں؟ بعض بار دوسرے کو خوش کرنے کے لیے انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اوپر سے پولیس آ جاتی ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، پہلی شرط، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرتا رہے. یعنی زبانی کلامی ایمان ایمان کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ یہ بھی مانے کہ اللہ ہے اور اس کی بات ہے اور اس کو مانے، اپنی مرضی کا کوئی عمل نہ ہو بلکہ عمل صالح ہو. اور آپ پیچھے بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرائط ہیں، ہو اللہ کے لیے، للہیت، اخلاص، اور طریقہ نبی کا ہو. کیا ہوگا اس کے لیے؟ یکفرن سیئاتہ، ہم اس کے گناہ جھاڑ دیں گے. سبحان اللہ، یعنی اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا. پھر دوسرا فائدہ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تیسری خوبی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ کیا ہے سب کچھ؟ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آپ دیکھیں ان چیزوں میں سب سے مشکل کیا ہے؟ کیا یومن باللہ مشکل ہے کہ یعمل صالحاً مشکل ہے؟ دو ہی باتیں ہیں نا. آپ میں سے جتنے لوگ کہتے ہیں کہ یومن باللہ مشکل ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. اور جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یعمل صالحاً مشکل ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیے اب میں جو بات کہوں گا نا، اس کو غور سے سنیے. جب یومن باللہ ہی ہو جاتا ہے نا، تو یعمل صالحاً مشکل نہیں رکھتا بلکہ وہ نعمت لگتا ہے. جب تک اللہ پر ایمان نہیں آتا، ہم مانیں کیوں؟ سمپل سی بات ہے، جس کو آپ بڑا ہی نہیں مانتے اس کی بات کیوں مانیں؟ آج جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کا مسئلہ وہ گناہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ان کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. تو نہ تو یومن باللہ مشکل ہے، نہ یعمل صالحاً مشکل ہے. شرط ایک ہے کہ اللہ کو اس کی شان کے ساتھ انسان پالے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ جھاڑے گا، یعنی جو زندگی کی علائشیں تھیں، گندگیاں تھیں، ساری دور، پھر جنتیں مل جائیں گی اور خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اور امت مسلمہ کو ان خوبیوں سے متصف کر دے. ذالک الفوز العظیم. لیکن اب آگے کافروں سے تذکرہ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ہے بدترین ٹھکانہ. دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آیا کفرو، اور اللہ کی آیتوں کے لیے لفظ آیا کذبو. فرق کیا دونوں کا؟ کفر کے انکار، ماننا ہی نہیں ہے، اور کذب کذب یا تکذیب کے مان کے انکار کرنا. جو اللہ کا انکار کرتا ہے پھر اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی نہیں مانتا، تو وہ دوہرے جرم کا شکار ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير